तो दूसरों के विकार हमारे पर असर नहीं करेंगे ना। धीरज प्रेम शांति और दूसरे का गुस्सा मेरे पर असर नहीं करेगा। सहनशीलता मधुरता का गुण है, व्यवहार दूसरे से प्रेम का होएगा, दूसरे का गुस्सा असर नहीं करेगा। तो सर्वगुण संपन्न ही संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। वो वायरलेस जो है ना, वो वायरलेस है बावने का, तो शांति का संदेश आप देने वाले बन जाएंगे। तो फरिश्ते वाली शांति, ब्राह्मणों की शांति, परमधाम की शांति, सतयुग की शांति, द्वापर युग की शांति, सारे चक्कर में हम इस समय वो संस्कार धारण करते हैं, तो वो इमर्ज करते हैं संपूर्ण शांति को। ओके, टाइम होता है, पूरा करते हैं। ओम शांति। अभी ये पांचों रूप को इमर्ज करते हुए, गुणों को इमर्ज करते हुए, सर्वशक्तियों को इमर्ज करके शक्तिशाली शांति में बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अभी लगता है अभी आप लोग यहाँ है। हम सब किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं। बाबा का बच्चा बनना माना रावण की गोदी से निकल करके बाबा के गोदी में आ जाना। पहले हम रावण के गोदी में थे, रावण के मुरीद थे, अभी हम बाबा के मुरीद बन गए, तो माना हमारा जन्म नया हो गया। परंतु माया के साथ हमारा संबंध आधा कल्प का है ना, तो हम माया के ग्राहक थे, कस्टमर थे आधा कल्प के। तो भले हम बाबा को अभी पहचान लिया, बाबा के बच्चे बन गए, परंतु माया हमारी पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हर मुरली के अंदर जितना बाबा बाबा शब्द आता है, उतना माया माया शब्द भी आती है। देखा है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे जो बनते हैं उसके ऊपर माया का भी नजर है। जिसके ऊपर बाबा की नजर पड़ी उसके ऊपर माया की भी नजर है, परंतु किसी ख्याल से माया नजर रखती है कि ये हमको छोड़ के ना चले जाए, बना के रखने लिए कोशिश करती। और अभी अभी कुछ समय के पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि माया जो ज्ञानी आत्मा होती है ना, उसके पास माया पांच विकार के रूप में नहीं आती, क्योंकि वो पहचान लेते हैं ज्ञानी आत्माएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मोटा रूप है ना, तो तीसरे आंखें मिली हुई है तो पहचान लेती है। तो इसलिए माया आती है छठा रूप से। तो माया का छठा रूप कौन सा? सुस्ती, लेजीनेस, आलस्य। क्योंकि ये जब छठा रूप से माया आती है ना, तो पहचान नहीं सकती जल्दी। वो बहुत मोहिनी रूप होता है और बहुत आकर्षण करने वाली होती है। तो उसकी निशानी क्या होगी? जिसके पास माया छठा रूप में आती है ना, सिक्स्थ वाइस, छठा विकार सुस्ती के रूप में, आलस्य के रूप में, वो कौन सी भाषा बोलेंगे? गे 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 गे। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बन जाएंगे। तो जब भी ये भाषा हमारी बुद्धि में चलती है या हमारे मुख से निकलता है तो समझ लेना चाहिए माया का आह्वान हो रहा है। और जिसके पास, ज्ञानी आत्मा के पास ये सुस्ती के रूप में माया आती है, वो ये खेल बहुत अच्छा खेलते हैं, बहानेबाजी का। जैसे ऊंट पक्षी का मिसाल नहीं बाबा देता है, उसको कहेंगे ना तुम उड़ो तो कहेंगे नहीं मैं तो ऊंट हूँ, और कहती है भाव बोझ उठाओ तो कहते नहीं मैं पंछी हूँ। कोई भी काम करना नहीं चाहते, बहाना बताते रहते हैं। इसलिए जिसके पास ये छठा विकार आती है ना, उसको कोई भी काम बोलेंगे वो कहेगा अभी नहीं, बाद में, अभी थोड़ा सो जाऊं, आज नहीं कल, मैं नहीं, दूसरों को बोलो ना। तो ये जो बहाना बताने की जो आदत है ना, ये माया का आह्वान है सुस्ती के रूप से। इसलिए ब्रह्मा बाबा को वो बच्चा पसंद आते थे जो बच्चा बाबा जो कहे अब, कब नहीं, जो कब करेगा वो आलसी, वो अब करेगा वो चुस्ती। तो आपको क्या बनना है? चुस्त। क्योंकि माया ये रूप सूक्ष्म रूप है, माया का चार रूप होता है। एक है सूक्ष्म रूप, दूसरा है गुप्त रूप, तीसरा है रॉयल रूप, चौथा है मोटा रूप। मोटा रूप तो हम समझ जाते हैं, क्रोध आया, मोह आया, परंतु ये जो सूक्ष्म रूप से आती है ना माया, बहानेबाजी का खेल कराती है, वो पहचान नहीं सकते। वो कहते हैं जिसके अंदर सुस्ती होती है ना, वो कहेंगे अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब बाबा विनाश का डेट बताएंगे ना तो हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके पहुंच जाएंगे। या तो कहेंगे अयो भविष्य क्या, खाओ पियो मौज करो। अभी तो सत्युग में, जब सत्युग में तो जाएंगे ना, सत्युग के लिए तो सब चाहिए, राजा प्रजा, वहां तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, सब सुखी रहेंगे। तो ठीक है, जो मिला मेरे को उतना ही ठीक है। ड्रामा को उल्टे रूप से ले लेते हैं। कभी कभी हम किसी को पूछते ना, कल आप आएंगे अमृत वेले योग करने? अगर कल्प पहले आए होंगे तो आएंगे। तो ये कौन बोलता है? सुस्ती बोलता है ना, माया बुलवाती है। पहले ही हमने बुद्धि में सोच लिया कल्प पहले उठेंगे तो उठा होगा तो उठेंगे, तो मना अभी उठने की पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। और खास करके दादी जान की सदैव कहती है ना, माया सुबह के टाइम सौतेली माँ के रूप में आती है, शाम के टाइम योग में मंडोदरी के रूप में आती है। रावण की जो वाइफ है ना, मालूम है ना, उसका नाम मंडोदरी था ना। तो सुबह के टाइम सौतेली माँ के रूप से वो है सुस्ती। अलार्म बजती है तो हम क्या कहते हैं, अभी बस अलार्म बंद करके एक मिनट इधर से उधर करके उठ जाएंगे, और एक घंटा हो जाती। उसके बीच में माया क्या करती है, सुस्ती कैसे लाती है, हमको अच्छी तरह से कमेंट्री देती है, ए तुम बहुत थक गई हो, सारा दिन कितना काम करना है, और बीमार भी हो, तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई हर्जा नहीं, सो जाओ। बाबा को गुड मॉर्निंग कर लिया ना बस। तो ऐसा लोरी देके देके, जैसे गुप्त रूप माया का जो होता है ना, चूहा जैसा काटती है ना, फूंक देके काट के चली जाती है, फिर समझ भी नहीं आता है कि क्या हुआ। तो सवेरे माया गुप्त रूप से आती है, सोतेली माँ के रूप से कमेंट्री देके सुला देती है, सुबह को देती है गोद और सारे दिन देती है मार। क्योंकि सुस्ती के कारण जो सो जाते हैं ना, जानते तो है ज्ञानी आत्मा है उठना चाहिए, बाबा के साथ रू रूहन करना चाहिए, जान करके भी वो उसी समय उसी रूप के वश हो जाते, फिर सारे दिन में बुद्धि जागृत हो जाती है ना, फिर पश्चाताप बहुत होता है। अरे हमने अमृत वेला मिस कर दिया, अरे हम आज नहीं उठे, तो सारे दिन खुशी खत्म हो जाती, परंतु पहचानते नहीं सवेरे सवेरे जब वो रूप आता है। तो इसके लिए दादी का कहना क्या है, जो पहला संकल्प आता है ना अमृत वेले, उसी समय बिस्तरे से जंप लगा के उठ देना, दूसरा संकल्प आने नहीं देना है, तो फिर हम सोतेली माँ का आह्वान नहीं करेंगे, नहीं तो वो वर्षा देने के हमको अधिकारी नहीं बनाने देंगे। तो ये माया का रूप समझना है, सूक्ष्म रूप कौन सा है सुस्ती का, कि बहाना देना, आज नहीं, कल, मैं नहीं, दूसरे, अभी नहीं, बाद में, ऐसा लगता है जिसके अंदर सुस्ती है ना, वो सदीव थका हुआ, और उसको जितना भी ज्यादा नींद करे और नींद चाहिए, करते कुछ नहीं है, करने के बिना ही थका हुआ रहता है, और जिस सबसे जास्ती नींद करते हुए भी सारा दिन यही उसकी कंप्लेन है, मेरे को ठीक नींद नहीं आई, तो इसलिए वो बहाना ही देते रहते। और माया का गुप्त रूप कौन सा, अमृत वेले, चूहे की मिसल आकर के काट के चले जाना, जानते हुए भी मर्यादा का उल्लंघन करा देते, जानते तो है ना, फिर भी माया का माया हमसे उल्लंघन करा देती। और रायल रूप कौन सा, बहुत रायल रूप, भाषा हम बोलते हैं पर समझते नहीं है, सुस्ती की भाषा है। अभी अभी बाबा ने मुरली में कहा था, कहते हैं कि सत्युग बाबा जो कहते हैं ना 6-8 घंटा अव्यक्त स्थिति रहे, अभी हम सभी तो पुरुषार्थी है ना, इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा अव्यक्त स्थिति कैसा बनेगा, वो तो अंत में होगा, अभी तो हम पुरुषार्थी है ना, तो बहाना उसमें भी रॉयल रूप से भाषा बोल करके अपने को छुड़ा देते। परंतु अगर हमको सुस्ती को भगाना है तो स्लोगन कौन सा याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब भी आपको संकल्प आवे ना कि ये काम मैं अभी नहीं करूं, नहीं अभी मैं करूंगी, माया को इंसल्ट करो, रावण को इंसल्ट करो, उसको चाय पानी नहीं पिलाओ, बाबा कहते ना चाय पानी टोली देंगे तो वो रोज रोज आएंगे, अभी भी बिल्ली भी देखो ना, दूध एक दिन पिलाएंगे तो रोज वो पूछ लटका के आते हैं, यहाँ दूध मिलेगा, अगर एक दिन उसको भगा दिया नहीं मिला तो फिर नहीं आएंगे ना। तो इसके लिए हमको ऐसा समझना है कि अमृत वेले में 4 बजे के बाद बिस्तरे पर सोना माना जैसे कांटों की सैया पर है, तो कभी भी हमको सोने की सुस्ती आ नहीं सकती। और सारे दिन के अंदर भी जो भी सेवा मिले, जो भी कर्म करना है, उसमें अगर ढीला संकल्प आता है, क्योंकि जिसके अंदर सुस्ती होती है वो सदैव हर काम बाद में करने का, अभी नहीं, इसके कारण वो कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते और उसके पास जमा हो जाता है। तो इसके लिए हम ये अटेंशन रखें, रायल रूप का भी सुस्ती हम अपने अंदर आने न दे। और चौथा रूप, तीसरा रूप कौन सा, एक है सूक्ष्म रूप, एक है गुप्त रूप और है रायल रूप। मोटा रूप तो हम जानते ही है, क्लास में बैठे बैठे झुटका खा लेते हैं, क्लास में बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते नींद आ जाती है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं किया है, परंतु बुद्धि चुस्त नहीं है। एक होता है शारीरिक सुस्ती, तो शारीरिक थकावट तो जितना आराम कर लिया तो खत्म हो जाता है, तो बुद्धि चुस्त नहीं है ना। किसी किसी की बुद्धि को चुस्त रखने की आदत नहीं, विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि बस जो सुना, सुनते समय नशा चढ़ा, बाहर गए सोडा वाटर, फिर पूछो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, भूल गए, और सुनते समय ऐसे झूमते रहेंगे, झूलते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि को चुस्त नहीं रखा। तो इसके लिए योग में निंद्रा को जीतना है, सुस्ती को भगाना है, तो सिर्फ ये आंखें खोल के रखने से कोई फायदा नहीं, वो तो रखना ही है, पर तीसरा आंखें बुद्धि रूपी नेत्र को जागृत रखना है। तो इसके लिए हमारे अंदर विचार सागर मंथन करने की आदत चाहिए। जिसके अंदर विचार सागर मंथन करने की आदत होगी ना, उसकी बुद्धि चुस्त रहेंगे, तो कभी भी उसके अंदर योग में कभी भी आलस्य नहीं आ सकता, योग में कभी भी झुटका नहीं आ सकता। इसलिए अगर ऐसे अगर हम सुस्ती को नहीं आने देंगे ना, तो आलस्य आ ही नहीं सकता, अलबेलापन आ ही नहीं सकता। आलस्य अलबेलापन कहते हैं ना, तो अलबेलापन आने का दरवाजा है आलस्य। अगर आलस्य ही नहीं, सुस्ती नहीं, तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। तो हम पहले आलस्य को भगाएं, उसके लिए दवाई है हर काम एक्यूरेट करें, एक्यूरेसी यही दवाई है। जिसके अंदर आलस्य होता है, सुस्ती होती है, वो कभी भी कोई काम एक्यूरेट नहीं करेंगे। काम चालू करेंगे, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा, आधे में छोड़ करके चले जाएंगे, फिर दूसरा काम लेंगे, वो भी आधे में छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे। परंतु जिसने सुस्ती को जीता है, उसके अंदर दृढ़ता है, दृढ़ता के बिना सुस्ती को जीत नहीं सकते। ढीला संकल्प आता है ना, मैं अभी नहीं करूं, बाद में करूं, आधे में छोड़ दूं, तो अगर हम दृढ़ता की चाबी को यूज करते हैं, बाबा ने जैसा कहा है कि बस मुझे ये काम करना ही है और तरफ बुद्धि को नहीं डालना है, तो हम कभी वीक थॉट्स, कमजोरी संकल्प आने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमको सुस्ती को सोतेली माँ के रूप में देखना है। जब भी आवे, जैसे हमने कहा ना, शाम को रावण नहीं आता है, रावण अपनी वाइफ को बेचता है। मोस्टली सत्संगों में ऐसा होता है, मंदिर में भी जाओ, कोई भाषण करते समय भी जाओ, वो तो हल्की सी नींद आती है, तो वो मंडोदरी चक्कर लगाती, तो उसको भी हम आने ना दें, क्योंकि पहले मंडोदरी आएंगी, फिर रावण के पास ले जाएंगे, तो रावण हमको मार देगा। तो इसके लिए जिसने सुस्ती को जीता, वो ही बाबा से पूरा वर्षे का अधिकार पा सकते हैं। संकल्प कभी भी ये ना आवे कि हाँ हमारा अटेंशन है, अभी पुरुषार्थ करेंगे, ये कहा, क्या, कौन सी भाषा है, अभी अटेंशन है, फिर कब पुरुषार्थ कब करना है, तो अभी तो टाइम बहुत पड़ा है ना, अभी जल्दी क्या है, अभी तो जीवन बिता लो, खाओ पियो, ऐसी जब इस संग दोष में आकर के हम समय को गवा देते हैं ना, तो फिर अलबेलापन आना इजी है। अलबेलापन किसको कहा जाता है, आधी नींद, वास्तव में सुस्ती पूरी नींद कराता है, अलबेलापन आधी नींद है। जैसे जिसके अंदर अलबेलापन होता है ना, उसकी बुद्धि की निर्णय शक्ति पूरी खत्म हो जाती, वो रॉन्ग रॉन्ग बोलता रहेगा, गलत काम करता रहेगा, और समझता रहेगा हम ठीक कर रहा है, अपने को सिद्ध करते रहेंगे और समझेंगे कि हमने ठीक बताया। इसलिए कुंभकर्ण की मिसाल देते ना, कुंभकर्ण क्यों लंका जल गए, क्योंकि कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था। तो हम भी आलस अलबेलापन की निंद्रा में हैं, तो हम कभी भी स्वर्ग की बादशाही का अधिकारी नहीं बन सकते। तो अलबेलापन कैसे आता है, अलबेले जो होते हैं ना उनकी भाषा क्या होता है, सुस्ती वालों की भाषा होती है गे गे, अलबेलापन वालों की भाषा होती है तो ये तो बदले पहले फिर मैं बदलूं, ये एक वारी तो मरे तो मैं दूसरा वारी मरूं, तो बहुत तो शब्द यूज करते। तो जब भी हम अपने दूसरों के साथ अपना भेंट करते हैं ना, तो हमारे अंदर अलबेलापन आ जाते। हम तो समझते कि महारथियों से भी ऐसा होता है, महारथी भी गलती करते हैं, अगर हम किया तो क्या हुआ। बाबा ने क्या कहा, जब गलती किसी से भी होती है उसी समय उसको महारथी का टाइटल ना दो, महारथी का नाम बदनाम नहीं करो। परंतु अलबेलापन आने की संभावना होती है ना, तो हम ऐसी भाषा बोल देते, महारथियों से भी तो होता है ना ये, अभी तो हम छोटे हैं ज्ञान में, हमारे से हुआ तो क्या हुआ। या तो हम पुरुषार्थी शब्द को गलत रूप से यूज कर देते, कोई गलती करते हैं, एक तो गलती करते, गलती को महसूस नहीं करते, माफी नहीं मांगते, और वही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगी। अगर पूछेंगी क्यों, कहते अभी कौन संपूर्ण बना है, अभी तो हम सभी पुरुषार्थी है ना, तो ये भी तो अलबेलापन है। पुरुषार्थी शब्द बाबा ने इसलिए नहीं दिया है कि इसको डिसएडवांटेज लो। पुरुषार्थी का शब्द क्या है, पुरुष और रथी, जिसके अंदर सदैव मैं आत्मा रथी इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान हूं, इस स्मृति को जो बना के रखते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थी। तो गलती करना, गलती को महसूस नहीं करना, माफी नहीं मांगना और सिद्ध करना, यह अलबेलापन। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है ना वो खत्म हो जाती। मैंने कुछ नोट किया था, बाबा ने जो अलबेलापन की भाषा बोला है ना, वो कहते हैं ना कि एक बारी दादी गुलजार ने कहा था, दो व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में, तो दादी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा दादी हम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे बात कर रहे थे ऐसे बैठ के, कितना टाइम, 5 मिनट। तो दादी ने कहा संगम युग की 1 सेकेंड की कितनी वैल्यू है पता है, सत्युग का 1 साल के बराबर। तो आप कहते ऐसे ही 5 मिनट ही बात कर रहे थे, 5 मिनट कितना सेकंड हो गया। तो अलबेलापन माना न समय की वैल्यू है, न संकल्प की वैल्यू है, बस ऐसे गवा देते अलबेलापन में। तो हमको ऐसा नहीं, ऐसा जब कहते ना हम ऐसे बैठे बातें कर रहे थे तो ये अलबेलापन है। और दूसरा कि कहेंगे कि आज तो हमारे से गलती हो गया ना, कल ठीक हो जाएगा, कल से मैं तीव्र पुरुषार्थी करूंगी, महसूस नहीं करते पर ऐसे चलाने का अलबेलापन माना चलता है। एक बार बाबा ने कहा ना कोई चीज ऐसा चलता नहीं है, आप चलाते हो तभी तो चलता है ना, अभी कोई खिलौना निकलता है उसको की देंगे तभी तो चलेगा ना। अभी अलबेलापन वालों की ये भी भाषा होती है, ये सब चलता है, इससे भी तो होता है ना, उससे भी होता है ना, ये जब भाषा चलता है यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, चलता है, ये अलबेलापन है। और ये भी कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत होशियारी से बोलते हैं, ये मेरी भावना नहीं थी, ये मेरा भाव नहीं था, परिस्थिति ऐसी थी ना, मुझे करना ही पड़ा, मैंने कर लिया। तो ये कौन बोलता, अलबेलापन। परंतु कोई भी संकल्प, कोई भी कर्म बिना हमको समझे वो आ नहीं सकता। और दूसरा कि जैसे कहते ना, कभी कभी हम कहते ना कि ड्रामा को जो होना होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वही जो कल्प पहले हुआ था, अभी चिंता क्या करना है। बाबा कहते ना चिंता नहीं करो, वो तो बात ठीक है, परंतु गलत रूप से ड्रामा के ज्ञान को उठा लेते। जो होना होगा कल वो होगा, अभी हमको चिंता क्यों करना है। कई बार ब्राह्मणों में संतुष्टता की भी गलत रूप से लेते, पुरुषार्थ नहीं करते, फिर कहते जो मिलना है वही मिलेगा, जो कल्प पहले मिला था उतना ही मिलना है, क्या हमको जल्दी अभी पड़ी है, तो फिर वो भी छोड़ देते। या तो कई बार हम ये भी कह देते ना अलबेलापन के कारण, कि बाबा ने कहा था कि एक बारी अलबेलापन की चश्मा पहनते, तो जो अलबेलापन की चश्मा पहनते ना, तो उसकी भाषा ये होता है, मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने तो बहुत सेवा कर ली, मैंने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, मैंने बहुत त्याग भी किया है, मैंने सेवा भी बहुत किया है, मेरे साथ सबका बहुत अच्छा संबंध है, ऐसा सबके साथ निभाना कोई कम बात नहीं है। पर बाकी सभी तो अंदर सभी में कमी तो है ही, तो मैं तो इनसे अच्छी हूं, ये अलबेलापन। माना अभी कुछ किया ही नहीं है, समझ रहे कि मैंने तो बहुत त्याग किया है, बहुत सेवा किया है, मेरा तो बहुत अच्छा संबंध सबसे, इनसे तो मैं अच्छी हूं, तो बस निंद्रा में अलबेलापन, आदि निंद्रा में सो जाते। या तो बाबा कहते हैं ना, जो आधी नींद में होती है वो जो भाषा बोलेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। किसी को कभी पूछो तुमने क्रोध क्यों किया, बाबा कहते हैं ना क्रोध भूत है, कहते नहीं मैंने क्रोध नहीं किया, थोड़ा सा रोब दिखाया, तो ये भी तो अलबेलापन है ना, करते क्रोध, रोब क्या है, क्रोध का अंश है ना, तो अगर हमने क्रोध भी किया, क्रोध नहीं किया मोटा रूप से, पर सूक्ष्म रूप में आ गया ना, तो इसलिए बाबा ने होली के मुरली में विशेष कहा कि बाबा के संग में सदैव रंग ना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, तो इतना भी हमको रास्ता अलबेलापन आलस्य को आने नहीं देना है। तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए ना, क्या होता है जब ज्ञान में आते हैं ना पहले, तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन होता है, तो कभी अलबेलापन आलस्य आ ही नहीं सकता, परंतु धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, अपने से निकल करके दूसरों के तरह हमारी नजर चली जाती है, तो हमारा गिरना चालू होता है, संभल के चलना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके आलस्य और अलबेलापन को जीतना है, तो अपने को देखो, बाबा को देखो, स्वयं को रियलाइज करो और समय को पहचानो। तो जिसने स्वयं को रियलाइज किया है और समय को पहचाना है, यही समय है हमको जो कुछ करना है वो कभी भी इन दो विकारों को आने नहीं देंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब तक हमको ये निश्चय नहीं हुआ है ना कि अभी बाबा ने हमको पूरा फ्रीडम दिया है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, ज्ञान एक ही बाबा सुनाते हैं एक ही समय, परंतु धारणा करने में नंबर वार क्यों, क्योंकि उसमें हम अपने पुराने संस्कार को आने देते हैं। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन नहीं लोग जागरण करते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी चोर आकर के कोई चीज लूट के ना जाए, तो हमको कौन सी जागरण करना है, आत्मिक जागृति। तो जब तक आत्मिक जागृति नहीं हुई है, तब तक आत्मा के अंदर जो खजाना है वो माया लूटने की कोशिश करेंगी। तो इसके लिए कंबाइंड रूप को कभी अलग नहीं करना है। माया कोशिश कर रही है, बाबा ने कहा कि वर्तमान समय माया की रूप आलस्य और अलबेलापन के रूप में, क्योंकि ये ज्ञानी आत्माएं पहचान नहीं सकते ना, रॉयल रूप से आती है, गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से, लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। कई बार कई आत्माएं बोल रहे हैं झूठ और सिद्ध कर रहे हैं हम सच है, तो ये भी तो अलबेलापन है ना। तो अगर बड़ों ने कहा कि राइट नहीं है तो हमको मान करके अपने को करेक्ट करके चलना चाहिए ना। कोई कोई तो इतनी सुस्त है तो जो भी काम करने के पहले श्रीमत लेने में भी सुस्ती करते, ये क्या पूछना है, अभी क्या वेरीफाई करना है, चलो कर लो बाद में बता देंगे, नहीं। क्योंकि जो भी कर्म के लिए अगर श्रीमत हमको क्लियर नहीं है तो हमको वेरीफाई जरूर करना है, ये श्रीमत के अनुसार है या नहीं। इसमें सुस्ती नहीं करना है, इसमें सुस्ती करना माना ये भी एक प्रकार की कंजूसाई नो। क्यों हम क्यों पूछे, क्यों बोले, नहीं, इसमें क्या है कि हम बाबा के समीप आएंगे। तो इसके लिए हम कभी भी अगर चुस्त रहना चाहते हैं, उसी दिन मोहिनी बहन बता रही थी ना कि जैसे दुनिया के अंदर क्या लोग करते हैं आजकल, एक्सरसाइज करते हैं, उनको खाने से भी नींद से भी ज्यादा एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर की एनर्जी बनी रहती है। तो ऐसे ही अगर हमको सुस्ती और आलस्य को, अलबेलापन को जीतना है तो सारे दिन के अंदर बाबा ने जो ड्रिल सिखाई है ना, अनेक प्रकार की ड्रिल सिखाई है, उसको हम बार बार करते रहे। तो बार बार वो एक्सरसाइज हम करते रहते हैं तो क्या हो जाएगा कि भारीपन निकल जाता है। जैसे देखो शरीर के भी भारीपन जिसको होती है ना, उसको नींद आती है, सुस्ती आती है, काम करेंगे थोड़ा और दिखाएंगे कितना थक गए। तो बुद्धि भी हमारी भारी है ना, इसलिए सुस्ती आती है। तो बुद्धि की भारीपन को निकालने के लिए कितनी प्रकार की एक्सरसाइजेस बाबा ने सिखाई है। तो सारे दिन के अंदर अगर एक्सरसाइज करते रहे तो मैं समझती हूँ आपकी एनर्जी जो है ना, मानसिक शक्ति, वो इतना बना रहेगा तो आपको जास्ती फिजिकल नींद भी जास्ती नहीं करना पड़ेगा। मानसिक नहीं, कभी कभी किसी के अंदर क्या है, थकावट शरीर की नहीं होती, मानसिक थकावट, किसी से तंग हो जाना, किसी से नाराज हो जाना, किसी से अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, तो इसका जो भारीपन होता है ना वो सुस्ती के रूप में आ जाती। तो अगर हमारे अंदर एक्सरसाइज करते सारे दिन में कई बार तो ऑटोमेटिकली वो भारीपन निकल जाते हैं, तो हम चुस्त रहेंगे। और बाबा कहते ना कि सारे दिन के अंदर अपना बचपन, ईश्वरीय बचपन सामने लाओ, तभी तो गीत है ना, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। तो जब हम अपने जितने भी बड़े हो जाए, बचपन के दिन नहीं भूलेंगे तो कभी भी सुस्ती नहीं आ सकते। बच्चे कैसे रहते, चुस्त रहते हैं ना। तो हम भी ईश्वरीय बचपन को सदैव स्मृति में रखेंगे तो हमारा उमंग उत्साह कभी नहीं कम होगा। जिसके अंदर उमंग उत्साह कम हो जाती है उसके अंदर सुस्ती आ सकती, और उमंग उत्साह भी इसलिए कम होता है क्योंकि उन्होंने अपना उमंग उत्साह किसी आधार से बनाया हुआ है। किसी से महिमा मिली, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने पोजीशन दी, उमंग उत्साह बढ़ गया। अभी वो निकल गया, वो ले लिया तो खत्म, जैसे बलून होता है ना, फूल जाता है फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसा हमको जीवन नहीं बनाना है। हम अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देना है। हमने अपनी जीवन की डोर बाबा के हाथ में दिया है ना। बाबा जो रोज हमें बोलता है वो महावाक्य हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाए। तो अगर वही हम कानों में सुनते रहेंगे, बाबा की दृष्टि में हम समाए हुए रहेंगे, तो हमको कभी सुस्ती नहीं आ सकती। तो कई लोग कहते हैं कि क्या करें, योग में नींद आती है ना, हाँ? तो हम सोचते कि नींद करने के पहले जाके बिस्तर पर ही सो जाए। नहीं, नींद आती है योग में, तो योग में नींद को जीतना है, आदत डालनी है। जैसे देखो एक अनुभव याद आता है, दादिया 14 साल भट्टी की थी ना तपस्या, तो उनको प्रोग्राम आता था संदेशों के द्वारा, रात को दो दो व्यक्ति योग करे, दो दो घंटा एक आमने सामने बैठ के। तो कई बार ऐसा होता था जो सामने बैठते हैं ना दृष्टि देने वाले, वो ही नींद करते थे, तो दृष्टि लेने वाले क्या करे, तो उसको देख देख करके थोड़े टाइम के बाद उसको भी नींद जुटका जाते थे। तो दोनों बाबा के पास जाते थे, बाबा दोनों को ऐसा जुटका नींद आती है, ऐसा योग से तो जाके सो जावे ना। बाबा कहा नहीं, आप जाके सरसों के तेल आंखों में डाल करके फिर जाके बैठो, नींद नहीं आएगा। क्योंकि अभी आदत नहीं डालेंगे नींद को जीतने का, तो अंत में आप नहीं निद्रा जीत नहीं बन सकेंगे। परंतु स्थूल में उन्होंने सरसों का तेल नहीं डाला, परंतु बाबा ने कहा कि आप योग में ही बैठ करके उस संकल्प को भगाओ। कई बार दादी को कंप्लेन करते कई भाई बहने, दादी सेंटर्स पर भी ना जो योग कराते वो ही नींद करते, तो योग करने वाले कैसे करे। तो दादी कहते तुम उसका कंप्लेन क्यों करते हो, तुम ऐसा योग में बैठो ना अलर्ट हो करके, उसको ऐसी दृष्टि दो नीचे बैठ के, उसकी नींद उड़ जावे। परंतु हम अलर्ट नहीं रहते ना, सुस्ती को जीतने के लिए अलर्ट रहना है, अलर्ट माना जागृत। तो इसलिए हमारी बैठक भी ऐसे हो। कई बार दादी हमारा ध्यान खींचवाते ना क्लास में भी, कोई ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, योगी का नहीं, सीधा बैठो एकदम आंखें खोल करके और दृष्टि लेते हुए, तो कभी सुस्ती नहीं आ सकती। और सारे दिन के अंदर हम ऐसे ऐसे बातें, विचार सागर, नशे वाले बातें विचार सागर मतन करें। और हमको समय की कदर इतना होना चाहिए कि बाबा कोई भी मौका देता है सेवा करने के लिए कलप में एक बार, मैं ऐसी इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से करूं जो हमको कलप के बाद फिर ये चांस मिलेगा। तो माना अपने भाग्य को देखने का, अपने प्राप्ति की स्मृति जो रखते हैं, उनको कभी भी ऐसे कमजोरी का संकल्प नहीं आ सकता। तो परंतु मेन अटेंशन हमको क्या देना है कि दूसरों को हमको कंपेयर नहीं करना है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो फेल होने वाले स्टूडेंट को कंपेयर नहीं करते, वो जो फर्स्ट रैंक लेते ना उनके साथ बैठ करते, हमको भी इनके जैसा बनना है। अगर हमारे अंदर भेंट करने का संस्कार है तो हम बाबा मामा के साथ करें, तो उनके समान हम बन जाएंगे। इसलिए बाबा सदैव कहते ना, फॉलो मदर फादर, ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करो। आज अच्छे चलेंगे, कल वो गिरेंगे तो हम भी उसके साथ गिर जाएंगे। तो इसके लिए मधुबन में हम रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं। अगर यहाँ रह करके भी हमने आलस्य और अलबेलापन को भगाया नहीं, तो हम घर में जाके क्या करेंगे। घर का वातावरण तो तमो प्रधान होता है, दुनिया का वातावरण तो है ही माया के, तो फिर वो हमको और माया अपना बना देंगे। तो इसके लिए इसको दुश्मन समझ करके उसको आने ही देना। बाबा कहते ना दूर से ही भगा दो, थोड़ा सा निशानी तो दिखाई देता है ना, तो उसी समय दूर से ही भगा दो, नहीं तो वो आकर के बैठ जाए, फिर उसके बाद भगाने में समय चला जाता है। तो इसके लिए वैसे तो कहा जाता है काम महाशत्रु है, परंतु काम से भी ज्यादा महाशत्रु है आलस्य और अलबेलापन ज्ञानी आत्माओं के लिए। अगर हमको माया जीत बनना है तो हमको ये छठा विकार से चालू करना है। आजकल ये लहर चल रही है, बाबा की क्लियर इशारा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तो हम जान लिया है कि मेरे अंदर कौन सी रूप से आती है सुस्ती। कोई काम करते करते दिल नहीं लगती, चलो हमको नहीं करना है, ये सुस्ती है। मेरे को वो उनकी काम अच्छी लगती, मैं वो करूं, ऐसा हमारा क्यों ध्यान गया। या तो हम कह देते कि इनसे भी तो ये होता है ना गलती, मेरे से हुआ तो मेरे को क्यों पकड़ते हो, ऐसे भी कह देते हैं ना। अच्छा है ना, मेरे को शिक्षा मिली तो मैं आगे बढ़ सकी ना। मामा क्या कहती थी, अगर कोई भी शिक्षा आपको देते है ना, उसको इनकार नहीं करो, स्वीकार करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो काम में आएगा। अगर उसको तिरस्कार करेंगे तो ना अपने लिए काम में आएगा ना दूसरों के लिए। तो कभी गुस्सा जाता है, कभी नाराज हो जाते हैं, ये भी माया का ही तो रूप है ना। तो इसलिए अमृत वेले जरूर अटेंशन रखे, ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठ करके यहाँ आकर के नींद करे, नहीं। बाबा ये भी कहता है ना कि अलबेलापन ये भी होता है, चार्ट लिखते हैं, चार्ट में चेक करते हैं, आज हमारा चार्ट कैसा रहा, अच्छा किसी को दुख नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया, कोई श्रीमद के उल्लंघन नहीं किया, अच्छा हमारा चार्ट बहुत अच्छा रहा, अच्छा कहाँ रहा। अगर किसी को दुख नहीं दिया, सुख दिया, सुख भी नहीं दिया, दुख भी नहीं दिया, तो ये अलबेलापन का चार्ट हो गया। कोई पाप नहीं किया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई पुण्य किया नहीं, अच्छा चार्ट कैसा हुआ, ये अलबेलापन का चार्ट है। तो ऐसा हमको अलबेलापन नहीं बनना है।